नमस्कार दोस्तों, छिंबड़ा भाई सबका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव के फैसले पर आगे बढ़ने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। इसके लिए दो तिहाई राज्यों की सहमति, संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पास करना जैसी प्रक्रिया भी शामिल है, जिससे गुजर कर ही यह विचार मुकम्मल हो सकता है। यह विषय व्यापक चर्चा का विषय है, जिससे इस तरह की चर्चा कराई जा सके, जबकि आम चुनाव में कुछ ही महीने का समय बचा हुआ है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघुजी ठाकुर जुड़े हुए। सर, मोबाइल लेने पर स्वागत सर आपका।
जी नमस्कार भाई।
सर, देश में हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव को, आप किस नजरिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, हम लोग तो इस एक देश एक चुनाव के पक्ष में काफी शुरू से रहे हैं, और हमने तो 1982 से लगातार इसका एक अभियान चलाया हुआ था, जिसमें तमाम दलों के लोगों को लेके कई बार सम्मेलन किए, मीटिंग की, प्रदर्शन किए, धरने किए। हमारी ये राय रही है शुरू से, और हमारे पार्टी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की भी राय रही है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव एक साथ होना चाहिए। इससे कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। एक तो जो चुनाव का खर्च है, ये चुनाव खर्च कुछ कम होगा। दूसरा, जो देश की जनता का समय बर्बाद होता है कि हर 1 साल के बाद, 6 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, वो भी रुक जाएगा। बार बार आचार संहिता लागू होती है, इससे बहुत काम रुकते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। और एक बार चुनाव हो जाए तो फिर 5 साल तक के लिए कोई चुनाव की आवश्यकता नहीं है। फिर एक सरकार जो है अपने काम करे, उसको ये भी बहाना नहीं कि हम काम भी कर पाए। इसमें कुछ प्रश्न भी बीच में लोगों ने उठाए थे कि क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी प्रत्याशी को जीते हुए विधायक की या सांसद की या किसी की मृत्यु हो जाती है। हमने उस पर अपनी ओर से सुझाव दिया था कि अगर मान लो किसी की मृत्यु होती है या कोई खाली होता है ऐसा, तो उसी पार्टी के से नाम लेके उसके लिए नामजद किया जाए, पर चुनाव न कराए। दूसरा सवाल था कि मान लीजिए कोई सरकार का बहुमत गिर जाए तो क्या हो, तो उसमें राष्ट्रपति को, राज्यपाल को अधिकार दे सकते हैं कि वो सभी की मिलाई जुली एक सरकार वहां बना दे, एक राष्ट्रीय सरकार वहां बना दे, ताकि 5 साल तक काम कर सके। तो इसको लेके हम लोगों ने काफी पिछले वर्षों में संघर्ष किया है। हमें याद है कि दिल्ली में भी हमने इसको लेकर कई सम्मेलन किए, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उसमें आए थे और भी लोग आए थे, तो हम लोग इस बात को उठाते रहे। अभी सवाल एक दूसरा ये है कि इस समय जो सरकार ने इसकी पहल की है, इस पहल को संदिग्ध रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपने चुनाव को लेकर के इसका इस्तेमाल करना चाहती है, और इसके इस्तेमाल के लिए कई प्रकार के संदेह लोगों के मन में है, जो कि स्वाभाविक भी है कि क्या सरकार चुनाव को बढ़ा सकती है या पीछे कर सकते हैं, एक, या क्या सरकार इस बहाने पे और लंबा इसको खींच सकती है। इसमें जो सरकार की सत्ता है, वो सत्ता का कितना लाभ हो सकता है, तो ये कई सवाल अभी लोगों के जहन में है। दूसरा, अभी सरकार ने एक कमेटी बनाई है, ये कमेटी भी क्या इतने जल्दी इस संसद के विशेष सत्र के पहले तक कोई रिपोर्ट दे पाएगी, और जो रिपोर्ट देगी तो वो रिपोर्ट क्या बहुत वैधानिक और सोची विचारी रिपोर्ट होगी, या कोई सरकार की तैयार छिपी हुई रिपोर्ट है जिसके ऊपर राष्ट्रपति जी, जो पूर्व राष्ट्रपति जी है, वो मोहर लगा देंगे। अगर वो ऐसा स्थिति है कि सरकार ने कोई रिपोर्ट पहले से तैयार की है, और जब राष्ट्रपति जी की राष्ट्रपति के पद पर थे तब भी वो केवल अंगूठा थे, वो नाम के महामहिम थे, परंतु वो मोदी जी के अंगूठा थे, तो जब वो अब पूर्व राष्ट्रपति हैं, अब अगर वो कमेटी के चेयरमैन बने हैं, तो अब तो अंगूठा से भी नीचे अंगूठा हो जाएंगे, पहले शायद हाथ के अंगूठा थे, पैर के अंगूठा हो जाएंगे, उसने वो किस पे दस्तखत कर देंगे, क्या करेंगे, इसका कोई संभावना नहीं कर सकते हैं। तो ये लोगों के मन में संदेह है, और ये संदेह कोई अस्वाभाविक नहीं है, संदेह स्वाभाविक है। हम चाहते हैं कि सरकार पहले वो जो रपट है, जो उनकी कमेटी की रपट बनेगी या जो भी है, उसको पहले सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करें, उस पर देश में चर्चा कराएं, ताकि एक साथ चुनाव तो देश में हो, पर जो सवाल इसके जुड़े हुए उनका भी कोई रास्ता निकल पाए। आप जैसे मान लीजिए कि अभी आने वाले 1 साल के भीतर में 10 राज्यों के चुनाव हैं, और जो बकाया 15-16 राज्य हैं, उन राज्यों का भी चुनाव नहीं है, तो क्या आप ये आंशिक रूप से लागू कर सकते हैं, या उनको कैसे शामिल करेंगे? फिर अगर उनको शामिल करना है, तो क्या उनके जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो भी प्रस्ताव भंग करने का निर्णय करेंगी? मान लीजिए कि भाजपा की जहां सरकारें हैं कुछ राज्यों में वो कर सकते हैं, पर जहां भाजपा सरकारें नहीं है वो तो इसलिए समझता तैयार नहीं होंगी, वो क्यों करेंगे। ये प्रश्न अभी बहुत विवादास्पद है। एक ये भी अनुमान है लोगों का कि शायद सरकार इसलिए कर रही है कि इसका विरोध विरोधी लोग करें तो ये कहें कि साहब देखिए कोई अच्छा काम नहीं होने देते, तो विरोधियों को कटघरे में करने के लिए भी हथियार करना हो सकता है। बहरहाल सिद्धांत के तौर पर मैं सहमत हूँ, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से सहमत है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के जितने भी चुनाव हैं सारे चुनाव एक साथ होना चाहिए। इन चुनावों के लिए जो सरकार की रपट है उस रपट को प्रकाशित करके उस पर चर्चा होना चाहिए और इस पर सारे देश की एक आम राय बनना चाहिए, तभी ये उपयोगी हो पाएगा।
सर, एक राष्ट्र एक चुनाव से सर विधानसभा हो या लोकसभा हो, इसके लिए चुनाव की जो कराने की कितनी संभावनाएं लगती है और क्या इसमें ये संभव है सर कि विधानसभा और लोकसभा
देखिए
जो
मेरे मेरे विचार में जो एक राष्ट्र एक चुनाव है उसका के लिए लोकसभा और विधानसभा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट
जी।
ये हिंदुस्तान में 2 माह का चुनाव पर्व बना लिया जाए, इसमें ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो, जिला पंचायत हो, मंडी कमेटियां हो, पानी कमेटियां हो, जितनी भी देश के चुनाव हैं, निगम है, नगर पालिकाएं हैं, विधानसभा लोकसभा जितने भी हैं, सारे चुनाव आप 2 माह एक साथ कराइए। इससे लाभ होगा, इससे लाभ ये होगा कि समय बचेगा देश का, क्योंकि आचार संहिता सब में लगती है ना,
जी
आचार संहिता निगम में भी लगती है, आचार संहिता नगर पालिका में भी लगती है, आचार संहिता पंचायतों में भी लगती है, और तंत्र उसमें भी फंसता है तो फिर वो इसमें पैसा खर्च होता है। पर अगर ये होगा कि सब एक साथ होंगे तो एक कड़ी नीचे से ऊपर तक बनेगी, उसमें चुनाव का खर्च भी बचेगा और खर्च अकेला नहीं बचेगा, समय भी बचेगा, देश का समय बचेगा, काफी पैसा भी बचेगा। तो मैं एक देश एक चुनाव के बारे में अभी नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि एक देश एक चुनाव में इनकी नियत का मतलब क्या है, क्योंकि ये सरकार की जो नियत है ये नियत संघ गणराज्य के पक्ष में नहीं है। ये सरकार जो है ये एकात्मक गणराज्य के पक्ष में है। इनके जो संघ के वैचारिक गुरु थे श्री माधव शंकर गोलवलकर जी, MS गोलवलकर जी, जो स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने अपनी किताब में बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था विचार नवनीत में कि हिंदुस्तान में राज्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, देश में केवल एक सरकार होना चाहिए और वो सरकार सभी का काम करे। 1962 से लेके 1972 तक जितने भी घोषणा पत्र जनसंघ ने जारी किए हैं उन सभी घोषणा पत्रों में उन्होंने माना है कि भाई देश में जो संघात्मक राज्य है नहीं होना चाहिए, एकात्मक राज्य होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ की समझ शुरू से रही है और उनकी मान्यता रही है कि देश में गणराज्य की आवश्यकता नहीं है, वो राज्यों के लिए समाप्त करके केवल एक केंद्र चाहते हैं और जो कि इस देश के लिए व्यवहारिक नहीं है। तो जब तक वो अपनी कल्पना को घोषित ना करें या ना बताएं तब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया सकारात्मक नकारात्मक देना उचित नहीं होगा।
सर क्या देखते हैं, अगर एक रास्ते एक चुनाव अगर होता है तो सर स्थानीय मुद्दों को कितनी अहमियत मिल पाएगी सर, अगर एक निशन एक इलेक्शन होता है तो?
नहीं, एक इलेक्शन अगर देश में कभी हो तो उससे स्थानीय मुद्दे कोई दिक्कत नहीं है, स्थानीय संस्थाओं को खत्म थोड़ी करना है। स्थानीय मुद्दे जो है स्थानीय रहेंगे, राज्य के चुनाव वाले मुद्दे राज्य वाले उठाएंगे, पंचायत वाले पंचायत को उठाएंगे। खतरा वहां नहीं, खतरा वहां है कि जहां पर इनकी नीयत अगर ये हो भीतर से कि हमको स्टेट्स को खत्म करके सारे पावर जो है वो एक यूनिटी गवर्नमेंट बना के उस पर रख लेना, हाथ अपने हाथ में लेना है, तो फिर स्थानीय मुद्दों को सवाल आएगा। तो अगर ये प्रयास करेंगे तो इस हिंदुस्तान में कोई इसके लिए तैयार भी नहीं होगा, मुझे लगता है कि गृहद्योगी भी क्षत्रिय बनेंगे।
सर क्या देखते हैं कि देश में चुनाव बहुत खर्चीला होता जा रहा है, इस पर सर किस तरीके से विराम लगेगा और साथ ही क्षेत्रीय दल इसमें किस तरीके से अपने सहभागी
देखिए दो दो
जी
प्रकार के प्रश्न अलग अलग हैं। एक प्रश्न तो है जो आपकी नई चर्चा की एक देश एक चुनाव को, जिसमें कहता हूं के पंचायत से पार्लियामेंट तक के एक साथ चुनाव, ठीक है। दूसरा सवाल है इनके खर्च का, इसमें खर्च को कम करने का एक तरीका ये है, नहीं मानता हूं एक तरीका है, परंतु ये अकेला ही तरीका नहीं है, इसके अलावा भी जो खर्च होते हैं उन खर्च के अन्य प्रकार हैं उनको भी रोकना पड़ेगा, उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। और वो कानून बनाने के लिए ये संसद सक्षम है, क्योंकि हिंदुस्तान के चुनाव आयोग ने एक बार याचिका पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में, जब मिस्टर टी एस शेषन चुनाव आयुक्त थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन हैज एम्पल पावर टू कंडक्ट फ्री फेयर एंड चीपेस्ट इलेक्शन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपके पास पर्याप्त अधिकार है, तो चुनाव आयोग ही इसमें अपने नियम बना सकता है, संसद की मंजूरी दे सकती है। उसमें ये प्रावधान करना चाहिए, नंबर एक, कि एक प्रत्याशी को एक जगह से चुनाव लड़ेगा। नंबर दो, जो प्रत्याशी किसी एक जगह का चुनाव लड़ता है और जीतता है, वो फिर आने वाले 5 साल तक दूसरा ये कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, कि आज हम लोकसभा लड़ रहे हैं, कल विधानसभा लड़ रहे हैं, फिर परसों पंचायत, ये नहीं कर पाएंगे। दो, नंबर तीन उसमें होना चाहिए कि आप खर्च की सीमा मानते हैं, परंतु मेरा कहना है कि आप साधनों की सीमा मानिए। सरकारें ये करें कि चुनाव के लिए एक एक प्रत्याशी के लिए जो गाड़ी उपलब्ध कराना है, जो उसकी परिचय सामग्री है या घोषणा पत्र है, इनके लिए चुनाव आयोग के माध्यम से उनको दिया जाए, ताकि पैसे का इस्तेमाल ही ना हो पाए। नंबर चार, सभाएं वगैरह करने का काम भी चुनाव आयोग के माध्यम से सार्वजनिक रूप से हो, ये भी उसमें प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि उसके अंदर प्रावधान हो जाए। तो जो चुनाव आयोग के माध्यम से खर्च कम करने के प्रावधान हो सकते हैं, उनको लेके भी कदम उठाना चाहिए, ताकि चुनाव का खर्चा कम हो। तो ऐसे और भी सुझाव, इस पर कई प्रकार के सुझाव आए हैं, कई प्रकार सुझाव हो सकते हैं। तो ये दो चीजें अलग अलग प्रकार हैं, एक जो है पंचायत से पार्लियामेंट तक देश में एक साथ चुनाव, ये अकेले खर्च के दृष्टिकोण से नहीं है, इसमें खर्च के साथ साथ बहुत सारी चीजें निहित हैं। इसमें राष्ट्रीय जीवन के समय का भी सवाल निहित है, इसमें मुद्दों का सवाल भी निहित है, इसमें काम हो सरकारी कामों के रोक रुकावट का भी सवाल निहित है। पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को अब एक भी करना चाहिए कि जो घोषणा पत्र राजनीतिक दलों के हैं, उनका पंजीयन चुनाव आयोग में हो, और वो पंजीयन हो, और निर्धारित अवधि में अगर वो पार्टी वो काम पूरा नहीं करती है, तो उस पार्टी की मान्यता खत्म की जानी चाहिए। इसके साथ साथ एक और भी चीज है कि हमारे देश में दल बदल एक गंभीर समस्या हुआ है, और खासकर जब जब चुनाव का समय आता है, तो दल बदल एक प्रकार का राजनीतिक मंडी बन जाती है, आदमी बिकने को तैयार खड़ा है और खरीदने को तैयार खड़ा है। तो इसमें भी प्रावधान करना चाहिए कि जो व्यक्ति पार्टी को छोड़ता है वो तो जवाबदार है, पर जो तो पार्टी उसे लेती है, तो अगर उसको कोई सरकारी पद देती है, तो उस पार्टी का भी माना चाहिए कि ये भी इसको भ्रष्ट कर रही है, तो उसकी भी मान्यता खत्म होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से ब्राइब के बारे में कानून है कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है, इसी प्रकार से दल बदल करना और कराना दोनों को अपराध माना जाना चाहिए, तो उसको भी दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए।
सर, संसद में इस विषय पर बहस हो और इसमें कोई सकारात्मक कदम निकले, इसको कितना अहमियत मानते हैं सर?
देखिए, संसद में जो वर्तमान हालत है, इसमें इसमें कुछ बहुत सार्थक चर्चा हो पाएगी मुझे लगता नहीं है। इसे नहीं लगता है कि संसद इस समय लगभग एकदलीय संसद बन रही है, विरोधी पार्टियों के लोगों के लिए समय नहीं मिलता है। अगर ये स्थिति हिंदुस्तान की संसद की है कि जो नेता प्रतिपक्ष है, उस नेता प्रतिपक्ष का भी अगर माइक बंद कर दिया जाता है, तो फिर लोकतंत्र और संसद कहाँ है? हमारे राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह जी, जिनके भाषणों से हिंदुस्तान की सरकार बड़ी पीड़ित रहती है, संसद के भी और संसद के बाहर, विधानसभा में और राज्यसभा के बाहर भी, यानी इतना बड़ा संवैधानिक अपराध इस सरकार ने किया है कि संजय सिंह के लिए पहले एक सत्र को निलंबित किया, जो अभी संसद के नियम प्रक्रिया हैं, उन नियम प्रक्रियाओं के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की जो संस्था है वो केवल एक सत्र को निलंबित हो सकती है। परंतु इस सरकार ने और इस पार्लियामेंट ने, राज्यसभा ने, सभी मेरे के षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, और अभी एक नए प्रकार का प्रावधान तैयार किया है, तैयार चालाकी का काम इस्तेमाल किया है, कि एक कमेटी जो बनती है, प्रिविलेज कमेटी, उस कमेटी के लिए सौंपा गया, और ये कहा गया कि जब तक उसका फैसला नहीं आता है, तब तक को निलंबन बढ़ा दिया। यानी आप निलंबन को एक अपृथक रूप से एक सत्र से दूसरे सत्र में ले जाना चाहते हैं। तो ये जो सरकार है या जो आज की संसद है, ये संसद लोकतांत्रिक संसद नहीं है, इस संसद से प्रति कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। हम तो विरोधी दलों से कहना चाहते हैं कि इस सवाल को लेके संसद को छोड़े, जनता में जाएं, और अगर जनता में जाके कोई बड़ा आंदोलन इसके ठीक पक्ष में खड़ा हो सकता है तो शायद देश बदलेगा, वरना संसद में तो कुछ नहीं होना है। संसद में जाएंगे, कुछ भाषण करेंगे, कुछ अपना गाना गाएंगे और चले जाएंगे सुखार्थी के लिए।
जी, तो ये थे हमारे साथ आज लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघुजी ठाकुर, जिन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर मोबाइल वाणी पर अपनी प्रतिक्रियाएं व अनुभव साझा किया। रघु सर, मोबाइल वाणी को समझिए,
धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद।
बड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।